हैं उनको मैं कष्टप्रद मानता हूँ। क्या रे संवर, अच्छा ये बताओ संवर कैसे होता, आगे तो अपन पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा डिटेल और कर ले, क्योंकि इसमें तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा कि आत्महित हेतु विराग, वीतरागता ही संवर का मुख्य कारण है, और उस वीतरागता में क्या क्या कारण है, प्रतिगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये सब जो है उपाय है। अंतरंग में वीतरागता लाने का उपाय क्या है, बहिरंग में आचरण। तो पहले तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि वीतरागता से ही हमारा संवर होगा, अब वीतरागता कैसे आएगी इसका मुझे वही उपाय करना पड़ेगा, मैं गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र ये अंगीकार करूं, तब जो है संवर तत्व मेरे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। अभी तो सिर्फ विश्वास कर लिया है, ये इसको इस तरह समझें। और आगे क्या कहते हैं, एक और छूट गया, रोके न चाह निज शक्ति कोई, शिव रूप निराकुलता न जोय। इसमें दो आ गए, क्या बचा, निर्जरा और मोक्ष, एक में एक एक। रोके न चाह निज शक्ति खोए, बस इतने से शब्द हैं निर्जरा के लिए, अपन एक्सप्लेन कर लें इसको। निर्जरा किसे कहते हैं, पार्शियल डिसइंटीग्रेशन, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, क्रम क्रम से कर्मों का आत्मा से पृथक होना या खिर जाना, झर जाना, इसका नाम निर्जरा। और ये किस वजह से निर्जरा क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं निरंतर इच्छावान हूँ, मैं निरंतर इच्छावान रहूंगा तो निर्जरा तो होगी नहीं, जबकि मुझे तो जैसे जैसे किसी का हिसाब चुकता करना है, भैया के 1000 रुपया लाए तो भैया चुकाओ, 10 ही 10 दो रोज, रोज नहीं महीना भर में 10 दो, तब तो चुकेंगे। और हम जो है चुकाते तो ढीला नहीं है, और लेते और जाते, जब तक नहीं चुक जाए तब तक मैं अपनी इच्छाएं और ना करूं। वो दुकानदार खुद कह रहा कि भैया पहले पुरानो नक्की कर दो फिर लियो नाओ, लेकिन हम जो है पुराना क्लियर किए बिना नया इकट्ठा करते चले जाते हैं, तो क्या कभी निर्जरा होएगी, कहते नहीं होएगी। वही कह रहे हैं रोके न चाह, मैं जो है अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ और अपनी शक्ति को व्यर्थ ही आश्रय और बंध में लगाता चला जाता हूँ, इसलिए निर्जरा मुझे होती नहीं। संवर ही नहीं होता है तो निर्जरा कैसे होगी, चाह रोक देना संवर है, और उसके बाद जो प्रक्रिया होती वो अपने आप निर्जरा की प्रक्रिया होती। अपनी शक्ति जो है यहाँ पर तपसा निर्जरा, तपस्या करने से निर्जरा होती है, और इच्छा निरोधा तपक, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है, और तप करूंगा जब इच्छा का निरोध करूंगा तो निर्जरा होगी, लेकिन मैं इच्छाओं का निरोध नहीं करता हूँ। रोके न चाह, मैं अपनी चाहत को तो इच्छाओं को रोकता नहीं हूँ, और अपनी शक्ति को जो है व्यर्थ ही होता चला जाता हूँ, जो मुझे शक्ति तपस्या कर्म में लगानी थी वो उसमें नहीं लगा करके, और कर्मों के बंध में, अर्थात मेरा निर्जरा करने में कोई रुचि नहीं है। इन सातों तत्वों में रुचि होना चाहिए, तो मेरी रुचि निर्जरा में नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर आकांक्षा करके नया बंध कर रहा हूँ, और शिव रूप निराकुलता, और इसी वजह से जो सुख रूप, शिव मतलब यहाँ पर सुख रूप है, जो सुख रूप है निराकुलता, आत्म को हित आगे कहेंगे, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन गई, निराकुलता ही सुख है, जितनी आकुलता उतना दुख, और जितनी निराकुलता उतना सुख, और जहाँ बिल्कुल निराकुलता है वहाँ सुख ही सुख है। तो कहते हैं वो शिव रूप अर्थात सुख रूप जो निराकुलता है वो मुझे पसंद नहीं आती, इसका मतलब है मैं मुक्ति के बारे में मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस तरह सातों तत्वों के बारे में मेरी जो स्पष्ट प्रतीति होनी चाहिए थी, मेरा जो अनुभव, प्रतीति का मतलब अनुभव, मेरा जो अनुभव होना चाहिए था वो अनुभव नहीं है, ना मैं जीव को ठीक ठीक समझ पाता हूँ, ना अजीब को, दोनों को गड़बड़ कर देता हूँ, मुझे जिन कारणों से आश्रय होता है उन कारणों को मैं जानता हूँ लेकिन उन कारणों को मैं उपाय कुछ नहीं करता हूँ, बंध के कारणों को भी जानता हूँ लेकिन बंध से बचने का उपाय नहीं करता हूँ, शुभ और अशुभ के द्वारा बंध होता है या शुभ अशुभ के उदय में आकर के मैं जो है और नए नए कर्म बांधता चला जाता हूँ, और संवर के लिए भी मुझे जो उपाय करना चाहिए थे वीतरागता वो उपाय भी नहीं करता हूँ, और जो इच्छाएं मुझे निरंतर नए कर्म बांधने में सहयोगी होती हैं जब तक मैं उनको नहीं रोकूंगा तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उसका उपाय भी नहीं करता हूँ, और जो मुझे सुखरूप है जो मुक्ति है निराकुलता है उस निराकुलता को भी मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। टोटल एक्सेप्टेशन, पूर्ण स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही स्वीकार कर लेना, ये सम्यक दर्शन। और मैं सबको स्वीकार नहीं कर पाता हूं। मान तो लेता हूं, जान लेता हूं, लेकिन स्वीकार नहीं करता। ये मेरा अपना मेरी अपनी गलती है, इसी गलती की वजह से मैं दुख पा रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? ये तो डिटेल है, शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन इन सब चीजों के, ब्लास्ट में ये सब याद नहीं रहेगा इतना सारा। ये तो डिटेल है, कितना याद रखना अपने लिए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण ये मेरे संसार के दुख के कारण है। उसमें से मैंने कोशिश करी है कि मिथ्या दर्शन क्या चीज है। तो मिथ्या दर्शन ये है कि जो भगवान के कहे गए सात तत्व हैं, उनका जैसा स्वरूप है मैं उसको वैसा स्वीकार नहीं करता हूँ, मेरी उसमें रुचि नहीं है, इसी वजह से मेरे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो चीज जैसी बताई गई है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपना कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष, इन सब का स्वरूप जैसा भगवान ने कहा है वैसा स्वरूप मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरी मान्यता नहीं बदलती है, मैं ज्यों का त्यों बैठा हूँ। पिता ने कोई बात बताई, बेटे ने मानी नहीं और अपनी ही धारणा को दोहराता है, तो क्या वो अपना कल्याण कर पाएगा? जिन वाणी हमको निरंतर हमारे कल्याण की बात बताती है, हमें वो रुचती नहीं, हमें अपने कल्याण की बात नहीं रुचती, तो हम अपनी मान्यता नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर भ्रमण तो हो गई। इसलिए शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अच्छी तरह से जान लो, अपने फॉल्ट्स खुद जान ले व्यक्ति तो बचने का बहुत आसान उपाय है। दूसरा किसी के फॉल्ट्स बताए और जब तक मैं उसको स्वीकार ना करूं तब तक मैं उनको निकालने का प्रयास ही ना करूं। हमने तो आपको फॉल्ट्स बता दिए कि आप एक तो पहले हम कभी मन नहीं बनाते दूसरे से अपनी गलती जानने का, बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति मन बनाए और किन्हीं के चरणों में बैठे कि मेरी कुछ गलतियां हो तो बताइएगा, पहली बात तो ये मन बनाना पड़ता। चलो मन बना हुआ है कि बताओ अच्छा हमारी गलती, हमारा कॉन्सेप्ट कहां गड़बड़ है, तो बता रहे हैं कि तुम्हारा यहां यहां कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अब स्वीकार कर लो। अब ये स्वीकार करने में जितनी देर लग जाए उतने ही सम्यक दर्शन में देर है, बाकी तो जानकारी हो गई। अब कहते याही प्रतीत युत कचुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान, और जैसा ये श्रद्धान है उस जैसी ये प्रतीति है वैसा ही अगर हमारा ज्ञान है तो वो भी जो है दुख देने वाला अज्ञान ही है, उसी को मिथ्या ज्ञान बोलते। मिथ्या ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, हमारे यहाँ पर दोनों सिनोनिम्स हैं। एक्चुअली अज्ञान के मायने हैं ज्ञान की कमी, भैया बड़े अज्ञानी इनको दे नहीं मालूम, वहां सामान्य रूप से ये प्रचलित है, लेकिन यहां है कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में, इसलिए मिथ्या। तो कह रहे हैं कि दुखदायक जो अज्ञान है वो जैसा इनकी हमने श्रद्धा करी है वैसा ही हम उनको जानते हैं, हमारा ये अज्ञान है। और इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या से, और ऐसा जिसका सोच है और ऐसा ही जिसका आचरण है वही मिथ्या आचरण है। यानी कुल क्यों महत्वपूर्ण हो गया सम्यक दर्शन, या क्यों महत्वपूर्ण है इनमें से श्रद्धा, इसी से सारी चीजें। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरा नॉलेज क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों क्लियर है तो मेरा एक्शन भी क्लियर है। इस तरह ये तीनों अच्छा, लेकिन इन चीजों को हम एक्सप्लेन अलग अलग कर रहे हैं, पर है तीनों एकदम जुड़ी हुई चीज है। जैसे कि तीन धागे एक साथ पकड़े हुए हैं और जरा सा इशारा करें तो तीनों में स्पंदन होता है, ठीक इसी तरह कषाय को समझना चाहिए। कषाय की डोर जो है वो लोभ है, मेन क्रोध दिखाई पड़ता है, मान दिखाई पड़ता है, माया दिखाई पड़ती, लोभ नहीं दिखाई पड़ता, और जबकि उसका मेन रूट कॉज है लोभ, लोभ से ही सारी कषायें। इसी तरह इसका रूट कॉज क्या है, हमारी कॉन्सेप्ट अनक्लियर होना, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, या अश्रद्धा, जैसा है वैसा नहीं समझ पाना, वैसा समझ नहीं, वैसा स्वीकार नहीं कर पाना, स्वीकार नहीं कर पाता ना, तो स्वीकार ये थोड़ा सा
क्लियर हो गया मेरा आंसर समझते
सब है। हाँ, स्वीकार नहीं समझते भी नहीं, अगर समझ लिया होता तो जानते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन समझते नहीं ठीक ठीक
तीन चीज़
जानना समझना और स्वीकार करना, जान लेते हैं ठीक ठीक, समझ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ठीक ठीक जानने के बाद भी, समझने के बाद भी और स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों चीजों में जानना समझना और स्वीकार,
ऐसा मन जी
बोलते हैं नॉलेज।
इतना ही, इसमें एक लाइन और कर लें ताकि ये क्या
एजुकेशन में बोलते हैं नॉलेज, अपना जानकारी,
इन्फॉर्मेशन,
अंडरस्टैंडिंग, समझना, एप्लीकेशन,
एक्शन,
चरित्र,
अंडरस्टैंडिंग,
नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन,
ठीक। नॉलेज के बाद अपने यहाँ पर समझ को बोला है ज्ञान,
अंडरस्टैंडिंग,
अंडरस्टैंडिंग,
तीनों हो गए,
जानना
समय ज्ञान समय
चाहे तो मैंने
एप्लीकेशन। और लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से कि सम्यक दर्शन भी अपने आप में एप्लीकेशन है,
मान
मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमने इसको बहुत आसान तो लगा है कि आसान कर लिया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के मायने हम चारित्र मान रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन के मायने हैं श्रद्धा। मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ लेकिन स्वीकार नहीं करता हूँ, तब तक मेरा न ज्ञान ठीक है न दृष्टिकोण ठीक है न आचरण ठीक है। अभी तो ये तीनों चीजें हो गई, कंडक्ट अलग थी, एप्लीकेशन ही कहना चाहिए। कैसे एक्सप्लेन करूं, एक्चुअली सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों इतने एक लेख हैं कि एक के होने पर तीनों ही होते हैं। हाँ एकदम, इसलिए जहां एप्लीकेशन कहा वहां पर सब आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब आ गया। ये कह रही
अलग अलग नहीं कर सकते,
अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे डिफाइन ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, या एक्सप्लेन कर भी लेंगे
एक्सप्लेन कर लेंगे
प्रैक्टिकली
वो तीनों
प्रैक्टिकली एक ही। ठीक बात, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, ये निसर्ग मतलब बाई बर्थ बाई नेचर, ये मिथ्यात्व इत्यादि अर्थात मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये बाई बर्थ फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब से हम हैं तब से हमारे साथ लगे हैं। अब जे ग्रहित सुनिए सुगे सुते, अब उनके लिए मैं बताता हूँ जो मैंने एडॉप्ट किए हैं, जो मैं बाहर से बहुत सारी मान्यताओं को स्वीकार कर लिया। एक तो मेरे साथ मिथ्या मान्यता लगी थी और एक मैंने बाहर से शुरू की, वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है, इसको बोलते अग्रहित। तो हमने कितनी अभी जो पढ़ा है वो क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व, मेरी अनादि काल की भूल, इसको अपन अपनी भाषा में क्या कहेंगे, मेरी अनादि काल की भूल मुझे जानकारी में आ गई है, समझना फिर भी बाकी है और एप्लीकेशन बहुत
इनहेरिटेड
है बहुत
चली आ रही
है हमेशा से चली
एक्यूमुलेटेड मीन
संग्रहित जैसा हो जाता
है कलेक्टेड इन द सेम
संस्कारवश संग्रहित होने वाली अश्रद्धा हमेशा से जो है, क्योंकि रोज रोज नई नई जुड़ती जा रही ना उसके साथ में, इतने वर्षों से हमारी वो मान्यता मजबूत होती चली जा रही।
शब्द इसमें दो शब्दों के अर्थ, निसर्ग जी है,
निसर्ग के मतलब नेचर बाई नेचर, और जी है मतलब यह,
और सुते सुनिए सुते
उसे भली प्रकार से उसे, यह ऐसा है वह दिस इज दैट और कोई विशेष है। दिस इज फॉल्स नॉलेज फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और अब हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज एडॉप्टेड, इतना फर्क। ठीक कितने बज गए, वो अटेंड नहीं किया पहला वाला, फर्स्ट जो हम लोग कर चुके ना वो तुमने अटेंड नहीं किया। सातों तत्वों को समझने के लिए हम शॉर्ट में ऐसा कहते हैं जैसे कि हमें कोई एक चीज मैन्युफैक्चर करनी है, हमें कोई एक बढ़िया मेटल मैन्युफैक्चर करनी है, हम क्या करते हैं पहले ओर लाते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज क्या है, इम्प्योरिटीज के कॉज क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ इम्प्योरिटीज है, और फिर उसके बाद तो उनके बीच में जो बॉन्डेज है इम्प्योरिटीज और ओरिजिनल मैटर के बीच में वो बॉन्डेज क्या है, और स्टॉपेज क्या है जो कि नई और विकृतियां इसमें ना आए, उसको रोकने का क्या उपाय है, और डिसइंटीग्रेट कैसे करेंगे, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन कैसे करें, तो प्योर मैटर का नेचर क्या है, ये सात बातें ही तो जानते हैं। तो जो इम्प्योर मैटर है या रॉ मटेरियल है वो जीव तत्व की तरह है, उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो अजीव है, और जो कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज वो इन्फ्लक्स वो कहलाता आश्रम, और जो उसके साथ बॉन्डेज है वो कहलाता बंध,
और जो हम उस नए इम्प्योरिटीज को रोकने का उपाय करते हैं उसका नाम है संवर, और जो पुरानी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम धीरे धीरे हटाते मेल्ट करके उसको एलाइट बनाने के लिए इम्प्योरिटीज, वो निर्जला कहलाती ग्रेजुअल, और जब प्योर हमारे लिए बेटर मिल जाता है वो मोक्ष की स्थिति है इस तरह से। और ज्यादा और पानी को मान लीजिएगा अजीब, और मैं हूँ जीव, मेरी नाव में बैठा हुआ हूँ, फिर क्या होता है कि उसमें छेद हो जाता है, छेद होता तो पानी आना शुरू होता, तो क्या होएगा, पानी अकेला आ नहीं रहा है, ठहर भी रहा है, क्योंकि जाने का तो कोई उपाय है नहीं, उसमें से निकलने का उपाय नहीं है, आता चला जा रहा है तो ठहर रहा है, तो जो आ रहा है पानी वो है आश्रव, और जो ठहर रहा है पानी वो है बंद, और मैं हूँ बुद्धिमान, तब क्या करूँ मैं, सबसे पहले पानी के आने को रोकूं, तो उस छेद को बंद करूं, अच्छा तो छेद के बंद करने से काम चलेगा क्या, नहीं, अब दूसरे व्यक्ति को बिठा दूं उधर कि तू उलीज बाहर कर उस पानी को, तो बाहर भी कैसे करेंगे, पूरी नाव तो ऐसे पलट नहीं सकते गड़बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है उसमें से उलीज लें, तो ये ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन है, थोड़ा थोड़ा कर्मों की निर्जरा करते हैं, जब पूरी नाव अपनी फिर पानी से खाली हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मुक्त हो गए हम, तब तक तो अपन पहुंच जाते हैं घाट पर, पानी सब काम चल रहा है, उधर चेप भी बंद हो गया है, पानी उलीचना चालू है, और चप्पू चलाने वाला चप्पू चला रहा है, जब तक जो है ये काम हुआ तब तक पहुंच गया। और सरल उदाहरण बताएं, मुनि महाराज जी जीव तत्व और सब जने अजीव तत्व और चौका में हो रहे हाथ हाथ चले जा रहे, अब बहुत हो गई भीड़, हमने कहा भैया देखो बंद करो, आप रोको, बहुत बहुत लोग हैं, देखो आ रहे थे वो निकल जाते तो भीड़ नहीं होती, मगर आउट जा रहे हो रुक जा रहे आना तो हो गया आश्रव और रुकना हो गया बंद, वो फिर धीरे से वहां कर दिया बंद कि भैया बहुत हो गई, अब एक जने जाके निकलो निर्जरा हो गई, भीड़ हो जाएगी, एक एक निकल गए, अब कौन बचा, हम ही बाहर निकल गए तो मुक्ति ऐसा तो रोज करते हैं अपन, ये सात तत्व ये प्रयोजन गुरु सिख अपने कर्मों की और उसके आत्म की। स्वरूप शिव का नमः त्रयोत्सव, उपयोगवान है, चैतन्य है, और मैं उसको जो है
जर्मान करके उसके साथ वैसा वो करता हूँ, बिहेवियर करता हूँ, जबकि उद्गल नव अधर्म अधर्म आकाश ये सब तो अजीब है, लेकिन जीव तो चेतनात्मक है, मैं उसको भी अचेतन की तरह ही ट्रीट करता हूँ। और अचेतन को तनुपजत अपनी उपज जान, तन्नशता को नाशमान। और मैं इस शरीर की उत्पत्ति को ही जीव की उत्पत्ति मान लेता हूँ। एक दर्शन ऐसा भी है जो कहता पंचभूत तत्व मिलकर के ही जीव उत्पन्न होता है, तो अपने आप में कोई एग्जिस्ट करने वाली चीज नहीं है। तो कहते ऐसी मेरी मिथ्या मान्यता है, जीव अलग है और अजीव अलग है। ये मुझे दोनों, जिसको अपन लिविंग और नॉन लिविंग बींग बोलते हैं, दोनों अलग अलग है। हम शरीर तो है नॉन लिविंग, शरीर तो अजीब है, उसकी उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेते हैं। ये हमारा अजीब तत्व के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जीव को मैं सुखी दुखी मान लेता हूँ, जो किसी जीव तो जो है वो सुखी दुखी होता नहीं, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, उसका तो जानने देखने का स्वभाव है। इस तरह से मैं जीव तत्व और अजीव तत्व इन दोनों बातों के बारे में भ्रम में हूँ। मुझे ये समझ में आ गया। फिर मुझे दूसरी चीज समझाना चाह रहे हैं कि जो मेरे कर्म आते हैं वो क्यों आते हैं। राग द्वेष की वजह से आते हैं मेरे अंदर कर्म, और उसी राग द्वेष को मैं करता हूँ और अच्छा मानता हूँ। सबसे बड़ी चीज, राग द्वेष तो सब करते हैं, लेकिन राग द्वेष को अच्छा मानना ये तो भूल है भाई। राग द्वेष अपना स्वभाव मान लेते हैं हम, तो कहते राग द्वेष को अगर अपना नेचर मानोगे तो फिर कभी बच नहीं पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है कि राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष तो आश्रयों का कारण है, उसी की वजह से मेरे कर्म आते हैं, संसार बढ़ता है। मैं ये जानूं और राग द्वेष को अच्छा नहीं मानूं। फिर जो बंध होता है वो भी इसी राग द्वेष के द्वारा होता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म मैं बांधता हूँ, और जब शुभ कर्म मेरे उदय में आते हैं तो मैं उसमें हर्ष मान लेता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। जब बुरे कर्म उदय में आते हैं तो मैं उसमें संक्लेश कर लेता हूँ। तो इस तरह हर्ष और विषाद करने से मैं नए कर्म फिर से बांधता हूँ। इसका मतलब है मैं बंध के बारे में भी ठीक ठीक नहीं जानता। तो ये मेरा बंध का कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है। जब मैं जान रहा हूँ कि इस तरह से मैं बंधन में पड़ूंगा, तो फिर मैं क्यों उस बंधन में को स्वीकार करता हूँ, मैं क्यों बंधन के बारे में गाफिल हूँ। ये चीज एकदम स्पष्ट इसमें समझा दी। एक एक लाइन में इन्होंने बहुत आसानी से हमारी गलतियां, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद संवर तत्व आता है। संवर के लिए एक लाइन कह दी हुई नहीं, रोके न चाहने की शक्ति को, ये है ना संवर के लिए। नहीं जरा आत्महित हेतु संवर कैसे होगा, संवर किसे कहते हैं बता पाएंगे कोई? संवर किसे कहते हैं?
कर्मों के आने को
रुक जाना, कर्मों के आने का रुक जाना ही संवर है। इसको स्टॉपेज भी अपन कह सकते हैं। शील्ड कर दिया हमने अपने को कर्मों के आने, तो कर्मों का आना कैसे रुकेगा? जब मैं राग द्वेष कम करूंगा और वीतरागता लाऊंगा, तो मैं वीतरागता जो है जिससे मेरा हित है उसको कष्टप्रद मानता हूं। ये भी मेरा संवर तत्व के बारे में कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। जिन कारणों से संवर होता है उन कारणों को मैं दुखदायी मानता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मैं संवर नहीं करना चाहता, या कि संवर के बारे में मेरा अप्रोच ठीक नहीं है। तो ये भी एक भूल हमारी है। और कौन सी भूल है? तो कहते निद्रा के बारे में भी भूल है। हम जितनी इच्छाएं करेंगे उतनी ज्यादा कर्मों का बंध होगा, निद्रा तो कम ही होगी, बंध ज्यादा होगा। तो कहते रोके न चाह, मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ। इच्छाओं को रोकना ही तप है, और तप के द्वारा ही निद्रा होती है। मैं इच्छाओं को रोकने रूप तप को अच्छा नहीं मानता हूँ, और अपनी शक्ति इच्छाओं को करने में व्यक्त कर देता हूँ। मेरी शक्ति को, अपनी शक्ति को जो मुझे अपने में सीमित रखनी थी, या शक्ति को संग्रहित करना, संवर की विशेषता है कि संवर के द्वारा शक्ति संग्रहित होती है, और वो शक्ति ही हमारे भीतर निद्रा का काम करती है। जैसे एनर्जी क्रिएट हो और वो कर्मों को तोड़े, अग्नि हमारे भीतर प्रज्वलित हो और वो कचरे को जलाए, तो निद्रा तो एक तरह से कचरे को जलाना ही है। तो वो तपस्या के द्वारा जलती है कर्म, तो तपस्या के द्वारा जो कर्म जलते हैं वो इच्छाओं के निरोध होने पर जलते हैं, और इच्छाओं के निरोध को मैं कर ही नहीं पाता हूँ। रोके न चाह, मैं अपनी चाहतों को रोकता नहीं हूँ और अपनी शक्ति को व्यर्थ गमाता हूँ। इस तरह मैं निर्जरा तत्व के बारे में भी भूल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा अपना स्वभाव है, शिव रूप है, सुख रूप है, मैं निराकुलता में सुख नहीं मानता हूँ। मैं आकुलता निरंतर करता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे सुख मिले, जबकि सुख तो निराकुलता में है। वास्तव में मोक्ष का स्वरूप तो यही है। जितनी निराकुलता, आचार्य ने एक बार कहा था बहुत पहले, वो सेंटेंस मेरे लिए आज तक गूंजता है 87 78 में। वो मैंने पहली बार प्रवचन सुने थे आचार्य के, उसमें आखिरी दिन प्रवचन में ये था कि जितनी निराकुलता आज है उतना मोक्ष आज भी है। हम जितने जितने निराकुल हैं उतने उतने मुक्त हम आए हैं। तो निराकुलता में सुख है, जबकि मैं निराकुलता में सुख मानता नहीं हूँ, आकुलता में सुख मानता हूँ। इस चीज की आकुलता कर लू, इस चीज को पालू। तो कहते शिव रूप निराकुलता न जोए, मैं कभी भी जो सुख रूप निराकुलता है उसके लिए प्रयास ही नहीं करता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपनी मुक्ति के बारे में भी भ्रमित हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था कि हम लोग बहुत सारी बातें भगवान की कही हुई जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में एक भी नहीं आती। और ये इससे मुझे सात तत्वों के कि भूल से मुझे लग रहा है कि अगर ये भूल सुधर जाती है तो व्यक्ति चारित्रवान हुए बिना नहीं रहेगा, अकेला सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक चारित्री हो जाएगा। क्योंकि वो इच्छाओं को रोक रहा है, अगर तो चारित्र ही है, चारित्र के बिना इच्छाएं नहीं रुकती है, संयम के बिना इच्छा नहीं रुकती है, संयम के बिना अनिराकुलता नहीं रुकती है, राग द्वेष घटते नहीं है। तो इसलिए परिभाषा एक जगह लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, और राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष घटावने के आचरण का क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, और कोई अलग से चीज नहीं है। इसका मतलब है कुल सारी चीजें राग द्वेष को घटाने के लिए है। इस तरह हम सातों तत्वों के बारे में पिछले दिनों समझ चुके हैं। जो सात तत्व हैं इनके बारे में मेरी भूल ही मेरे संसार भ्रमण का कारण है, पहली बात। और इन जुत विषयन में जो प्रवल, और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ, इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ जो मेरी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, विषय मतलब पांच इंद्रियों के विषय, जिनको इंद्रिय अपना सब्जेक्ट कहना चाहिए, विषय को एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो अपन है, आत्मा ऑब्जेक्ट है ये सारे। तो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आने वाले जो पदार्थ हैं ये कहलाते हैं विषय। विषय की परिभाषा इतने जो इंद्रियों का के द्वारा जानने में आए वो सब विषय हैं, या जो इंद्रियों के क्या उसको शब्द भोग, हाँ इंद्रियों के द्वारा भोगे हैं, ये इंद्रियों के भोग पदार्थों को ही जो है विषय कहते हैं। पांचों इंद्रियों के अलग अलग भोग पदार्थ हैं, देखना पसंद करती है, कान सुनना पसंद करते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए पांचों के पांच विषय हैं। इन विषयों में मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ, इन लाइनों से क्या निकालना देखिएगा, इतनी छोटी, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इस प्रकार की धारणा के साथ जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त है वो जो है वो मिथ्या चारित्र है। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर पांचों इंद्रियों के विषय में हम प्रवृत्त हैं तो वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए कहते हैं कि जो वितराग सम्यक दृष्टि है उसके भोग भी कर्मों की निद्रा के कारण बनते हैं, क्योंकि वो पांचों इंद्रियों के पदार्थों को ग्रहण करते हुए भी नहीं ग्रहण करता। पश्चिन अपि न पश्यति, ब्रूवन अपि न ब्रूवति, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता, खाते हुए भी नहीं खाता। इसका मतलब है कि उसका भीतर में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब वो मजबूरी है कि पांचों इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, मैं क्या करूं, आंख बंद कर लूंगा, नहीं आंख बंद करने से थोड़ी होगा, आंख तो खुली है, आंख से सारी चीजें दिख रही है, लेकिन अब वो चीज नहीं है। एटीट्यूड चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो जाने से सारा कुछ बदल जाता, व्यवहार बदल जाता। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस तरह के भ्रम के साथ पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होता हूँ तो ये मेरा मिथ्या चारित्र है, और यो मिथ्यात्वाद ये इस प्रकार से हमेशा से बाई बर्थ कहना चाहिए, या कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब से हम हैं तब से ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ी, हमारे नॉलेज में भी, नोइंग में भी है, और हमारे एक्शन में भी, तीनों में जो है गड़बड़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से। ये हमारी अज्ञानता में तीनों चीज शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या दर्शन भी शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या ज्ञान भी शामिल कर रहे हैं, मिथ्या चारित्र भी शामिल कर रहे हैं, सब अज्ञानता, क्योंकि एक बिगड़ा है तो सब बिगड़ गया। बहुत मीठा लड्डू है लेकिन उसमें विष डल गया है, आप बताइए क्या करेंगे उसका, ये कहिए अच्छा हो। तो मुंह के बारे में यही है कि सबसे खतरनाक क्यों मुंह माना गया है, क्योंकि वो पूरे उसको विषाक्त कर देता है। लड्डू हमको पूरा नहीं मिला, थोड़ा सा मिल गया तो भी ठीक है, दो दाने भी नुक्ती के मिल गए हैं पर विष नहीं है तो भी ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है, थोड़ा सा दर्शन मिल गया है, थोड़ी सी अंतराय कक्षोपम होने से थोड़ा सा हमें शक्ति मिल गई है, या भोग की सामग्री मिल गई, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म खतरनाक नहीं है, घातिया कर्मों से सबसे खतरनाक मुंह है, क्योंकि लड्डू तो पूरा है पर विष मिला, हमारे पेट वेट तो भरना दूर हुआ। तो इस तरह तरह से एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होने की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब कहते हैं कि और क्या हमारी गड़बड़ी है जो कि हमने यहाँ संसार में आकर के और ग्रहण कर ली है। ये तो हमको कुछ चीजें हैं जो कि बाय नेचर अभी तक हमें मिली हुई थी, इनके बारे में भी हमने समझ लिया कि बाय नेचर तो हम इस तरह के ब्रह्म थे, वो